भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 अध्याय शीर्षक भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक क्रमांक 32। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपे कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषियत् भवप्रवाहः। अनुवाद। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूं। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, चूंकि भीष्मदेव एक राजनीतिक कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहां पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों की अग्रणी तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने भक्तों के अग्रणी यानी नेता हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसीलिए भीष्मदेव को कोई अन्य इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं होता, तब तक भगवान उसके नेता नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध करना होता है। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त के हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक अभिप्राय से नहीं, अपितु भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए, जो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, न केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के आचरण में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं, जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसीलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं, यद्यपि वे उनके सारे कार्यों की साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे हैं, वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की भी कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल उत्स हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने के भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। हरे कृष्णा। आज के इस रविवार के उत्सव में आप सबको स्वागत है। कल बड़ा पवित्र दिन था, मकर संक्रांति। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, दो खास घटनाएं इसी दिन घटी। 5000 साल पहले इसी दिन भीष्म पितामह एक आदर्श तरीके से अपना देह त्याग कर भगवत धाम को पधारे, और ये वो ही दिन है जब कलयुग के युगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बहुत ही प्रिय निकटतम पार्षद, जो उनको प्राण से भी प्रिय थे, उनको त्याग कर बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। श्री चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर से वर्णन है किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस उद्देश्य से संन्यास लिया, किस तरह से लिया। बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली, आंखों में आंसू ले आता है ये प्रसंग अगर श्रवण करेंगे। उनकी मां, उनकी इतने सारे निकटतम पार्षदों को छोड़कर वो संन्यास ग्रहण किए, बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, कि अपना जो हेतु है अवतार का उसको वो पूर्ण करेंगे। यहां भी भीष्म पितामह कहते हैं, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह। भौतिक संसार उन्हीं से आता है, पर फिर भी वो भौतिक संसार में प्रवेश करते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार, आत्ममाया, अपनी इच्छा से। और खास करके ऐसे महान भक्त जो पूर्ण रूप से उनको शरण गए हैं, उनके प्रति उनके नेता बनकर उनको मार्गदर्शन देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, भगवान गीता में कहते हैं, खास मैं उनको परमात्मा के रूप में उनके हृदय में उनको मैं मार्गदर्शन देता हूं, किस तरह से वो मेरे धाम को प्राप्त करें। कौन किसको? भगवान तो सबके हृदय में बैठे, सबको मार्गदर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि हम प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अभक्त जो है उनके मार्गदर्शन की परवाह नहीं करते, तो इसीलिए चुप रहते हैं। पर भक्त जो है तेषाम सतत युक्तानाम, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, बड़े प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। और इसीलिए ददामि बुद्धि योगम, तो मैं उनको अंदर से हृदय में मार्गदर्शन देता हूं, ये न माम उपयान्ति ते, जिसके द्वारा मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। और यहां हम देख रहे हैं आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं नवम अध्याय के प्रथम स्कंद का 32वां श्लोक, सुबह हमने चर्चा किया प्रसंग क्या है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, कुरुक्षेत्र में पांडव जीत गए हैं, बड़े पैमाने पे नरसंहार हुआ है, सारे कौरव पांडव की सेना भी मारे गए, केवल कुछ उंगली में गिने जाने वाले कुछ लोगों को छोड़कर पांडव के अलावा। महाराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मैं ही उनका कारण हूं और तीव्र पश्चाताप हो रहा है और वो उस रणभूमि में प्रवेश करते हैं अपने भाइयों के साथ। कृष्ण के आदेशानुसार अच्छी तरह से सज धज कर वो उस जगह पर आए हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में वो स्थल है जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, कई दिनों से लेटे हुए। वो मकर संक्रांति उस दिन की राह देखकर, क्योंकि उस दिन सूर्य जो है मकर राशि से होकर उत्तरायण में प्रवेश करता है और महान योगियों के लिए ये बहुत पवित्र माना जाता है वो दिन। तो उस भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जब चाहे वो शरीर छोड़ते थे, छोड़ सकते थे। काफी दिनों तक वो लेटे रहे, हालांकि बहुत दर्दनाक स्थिति थी पर लेटे रहे। इस समय की राह देखते हुए और जब वो स्थिति आ गया, अनुकूल समय आ गया, तो अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के आने पर भीष्म पितामह ने उस स्थिति में भी युधिष्ठिर महाराज को धर्म का सबसे पहले सांत्वना दी युधिष्ठिर महाराज को और बताया कि ये उनका दोष नहीं है, ये तो कौरवों का दोष था, उनका जिद था अधर्म के पथ पर चलने का और उन्होंने पांडवों पर कई प्रकार के अत्याचार किए थे, कई कष्ट परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, अन्याय हुए थे उन पर फिर भी पांडवों ने विप्र धर्म अच्युताश्रय, भक्तों धर्म और भगवान का आश्रय कभी नहीं छोड़े। तो इससे प्रसन्न होकर भीष्म पितामह बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, इसीलिए तुम आज जीवित हो। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना तो दी और कहा कि प्रभु अब एक राजाहीन राज्य है, प्रजा ऐसे एक राजा के प्रति राह देख रही है, भगवान ने ये सुंदर आयोजन किया है, अब तुम राज्य करो। तब युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से प्रश्न पूछे, दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, सब प्रकार के धर्म बताए, किस तरह से राज्य करना है इत्यादि। और वो क्या आराम से चटाई पर बैठकर पेड़ के नीचे नहीं, बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, बहुत ही दर्दनाक स्थिति में, पर फिर भी धर्म प्रज्ञ कैसा है देखिए भीष्म पितामह का। पूरे विश्व से, ब्रह्मांड से बड़े बड़े राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि सब आए हुए हैं इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए, किस तरह से भीष्म पितामह एक आदर्श रूप से देह त्याग करेंगे। और जब युधिष्ठिर महाराज को धर्म के बारे में बतला रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक अनुकूल समय आ गया है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश किया है। और तब वो कहते हैं जब भीष्मदेव वृत्ति पर कार्यों का वर्णन कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। जो महान योगी होते हैं वो अपने चक्रों को वश में करके ऐसे अनुकूल परिस्थिति में उस चक्र को धीरे 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 ऊपर लाकर ब्रह्मरंध्र से फोड़कर स्वेच्छा अनुसार जहां भी वो जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। पर ये बहुत प्रायशः नामुमकिन है आज के कलयुग में। पर भक्त भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति हम कभी सुनते नहीं कि उन्होंने जाके अष्टांग योग का अभ्यास किया, पर अनुकूल परिस्थिति आने पर उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण सामने आके बैठे हुए, भीष्म पितामह की आंखें दो भौरों के समान थी, भगवान के मुख कमल के ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित होकर भगवान का स्मरण करते हुए अब बोलना बंद किया। तत्पश्चात उस व्यक्ति ने, यानी भीष्म पितामह, जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, बोलना बंद कर दिया। क्यों बोलना बंद कर दिया? इसका मतलब है अपने मन को उन्होंने वापस खींच लिया। जब आदमी बोलने लगता है, जब बोलता है वहां मन उसका जाता है। इसीलिए मौन व्रत करना चाहिए। अगर मन को नियंत्रण करना है तो मौन व्रत बोला जाता है। बड़बड़ 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 करते रहेंगे तो मन कहीं भी भागता रहता है। जहां हम बोल रहे हैं मन उधर जा रहा है। भगवद गीता में भी बताया गया है, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या। मन की तपस्या में एक चीज है, जितना जरूरी है उतना ही बोलना, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना। वाचो वेगम, ये बोलने की प्रवृत्ति, जितना हम बोलते हैं उतना हमारा मन विचलित होता रहा, जहां जहां जाता रहता है। जहां मन जाएगा वही तो बोलेंगे, विषय बोलेंगे। तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा कर रहे थे भीष्म पिता अपना युधिष्ठिर महाराज के साथ, पर उन्होंने सबसे पहले तद उपसंहृत्य गिरह, गिरह यानी वाणी, उपसंहृत्य उन्होंने बोलना बंद किया। एक गंभीर मन का, गंभीरता का लक्षण है चुप रहना, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, जितना जरूरत न हो बोलना, जब चाहिए उतना ही बोलना। तो पहले बोलना बंद किए, यानी खींच लिया अपने मन को। फिर उसने समस्त बंधन से पूर्णतया मुक्त होकर अन्यत्र से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, चार भुजाओं वाले थे और चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। भगवान गीता में कहते हैं योग की परिपूर्णता क्या है, मन को नियंत्रण में करना। मनैव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, मन बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासंगो मुक्तेर निर्विषयम मनः, जब मन विषयों के वस्तु में लग जाता है तो बंधन में का कारण हो जाता है। वही मन जब विषयों से परे होकर भगवान के विषय में चला जाता है तब वो उससे परे जाता है। तो इसीलिए भगवान दूसरे जगह गीता में कहते हैं यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्यैव वशम् नयेत्। बोले जहां जहां तुम्हारा मन जाता है अर्जुन, मन चंचल है, बहुत ही चंचल है। आप यहां बैठे हुए हो, आप प्रवचन सुन रहे हो सकता है आपका मन यहां नहीं है, या उल्टा हो सकता है आपका मन यहां है, पता नहीं कहां कहां घूम के आ गया है। एक क्षण के अंदर चलती, चलती मतलब चलना, चंचल मतलब बहुत जल्दी चलना, छलांग मारना इधर से उधर। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म, चार संज्ञाओं से संबोधित करते हैं। चंचल कभी इस समय एक क्षण के लिए वहां, एक क्षण के लिए वहां, प्रमाथी और एक चीज देखा तो मंथन करने लगता है शरीर मन को। बलवत और एक बार मन कुछ चाहता है तो बार बार अंदर से बोलता है सोचो इसके बारे में, सोचो इसके बारे में, सोचो इसके बारे में। प्रमाथी बलवत और इतना शरीर है कि जब तक उसको उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं करते तब तक, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खींचते रहते खींचते रहते खींचते रहते जब तक उनको नहीं मिले। और दृढ़ बहुत दृढ़ है, तो जहां जहां मन जाता है अर्जुन उसको पकड़कर वापस नियम्य आत्मन्येव वशम नयेत् अपने वश में लाओ। बहुत मुश्किल है मन को वश में लाना। जो भी जप के लिए बैठे हैं कभी प्रामाणिकता से जप, ध्यान पूर्वक जप करने के लिए, वो बतला सकते हैं, उनको मालूम है कितना मुश्किल है मन को नियंत्रण करना। जब हम निर्णय लेते हैं कि मन को नियंत्रण करेंगे तभी सबसे ज्यादा संघर्ष, तभी ज्यादा नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ सोचना नहीं, सीधा हरे कृष्ण केवल सुनना है बस, हरे कृष्ण एक मंत्र बोला तुरंत मन में क्या सुना तुमने, बहुत अच्छा सुना, ऐसे ही सुनते रहना, कल सुबह भी ऐसे ही करना, पर सुबह थोड़ा जल्दी उठना, आज रात को जल्दी सोना, हो गया फिर उधर पूरा प्लानिंग शुरू हो जाता है एक मंत्र के अंदर। यतो यतो निश्चल, जहां जहां भागता उसको पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, भाग उसके पीछे भागते भागते तो हो जाता है टाइम। पर यहां हम देखते हैं भीष्म पितामह परम योगी, हजारों विषय पे बात कर रहे थे पर जब उनको लगा अभी समय आ गया मन को वापस ले लेना है, सारे विषयों से खींच लिए। दो चीज मन का, दो कार्य, एक जहां भी जा रहा है वहां से लाना और जहां चाहिए वहां लगाना, ये दो चीज है मन को। एक जहां जाए जहां भी भाग रहा है वहां से उसको लाना, खींच के अपने वश में लाना, और वश में लाने के बाद स्वेच्छा के अनुसार जहां चाहिए वहां लगाना उसको। पर हम देखते हैं जब हम मन को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं जहां जहां नहीं चाहिए वहां जाता है और जहां चाहिए वहां नहीं लगता है। पर भीष्म पितामह इतने महान योगी थे, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय यक्त तमो मतः। एक भक्ति योगी भीष्म पितामह जैसे महाजन इतने महान योगी थे कि बाणों की शैया पर लेट, कोई आसन नहीं, कुछ नहीं। योगियों को आसन में बैठना पड़ता है, बहुत सारे क्रिया करने पड़ते हैं तब जाके धीरे धीरे मन को नियंत्रण कर सकता है। पर प्रेमी भक्त जो है भीष्म पितामह जैसे इतने महान योगी थे, पूर्ण रूप से मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया था, उनकी सेवा में जीवन भर लगे थे कि जब चाहे मृत्यु के समय में भी जहां से भी मन जा रहा था वहां से उसको खींचा और भगवान के मुख कमल के ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित किया, जैसे एक दीप वो स्थान में जहां पूरा हवा थोड़ा भी नहीं है, एकदम सीधा खड़ा रहता है, इस तरह से उनका मन एकाग्र होकर भगवान के मुख पर लगा हुआ था। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अकल्याण से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मुखारविंद पर ध्यान किया, बोले दो चीज हो रहा है यहां, वे तुरंत समस्त भौतिक अकल्याण से यानी अमंगल चीजों से भौतिक चीजों से पूर्ण रूप से निरासक्त हो गए। जब तक कुछ आसक्ति रहती है तब तक मन वहां जाता है। हम देखते हैं मृत्यु के समय में कोई को किसी को पूछा जाए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बोले मेरे को मसाला डोसा खिलाओ थोड़ा, ये मेरा अनुभव है। हमारे एक बहुत निकटतम रिश्तेदार, उनको पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है, उन्होंने कहा था मुझे मसाला डोसा खिलाओ। पाइप लगाया हुआ था नाक में, बहुत कुछ नहीं, मतलब कुछ खा नहीं सकते थे, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, मुंह सूखा जा रहा था और पता चल गया कि अभी शरीर छोड़ने वाले। उनको पूछा गया तो उन्होंने ये बोला तीव्र इच्छा है बस। लोगों को पूछते हैं ना कुछ इच्छा है क्या, हाँ बहुत सारा इच्छा है, बोलने नहीं पाते बेचारे, इशारा करते करते वैसे ही शरीर छोड़ देते, बहुत मुश्किल है इच्छा से निवृत्त होना, पूर्ण रूप से इच्छा रहित होना नामुमकिन है क्योंकि आत्मा का स्वरूप है इच्छा करना। ये जो बौद्ध तत्व है ना, पूर्ण रूप से इच्छा रहित होना ये नामुमकिन है। इच्छा रहित होना भी एक प्रकार की इच्छा है, मैं इच्छा रहित होना चाहता हूं, मैं इच्छा रहित होना, वही तो इच्छा है वो। तो इच्छा जो है इसको भगवान में लगाना, भगवान को प्रसन्न करने, भगवान को तृप्त करने, भगवत प्राप्ति के लिए, वो इच्छा, वो सही इच्छा है। भगवान की इच्छा हमारी इच्छा बनाने, उसको कहते हैं एकत्व। हम कहते हैं ना दो लोग एक हो गए उनकी इच्छाओं में, हम सब भारतीय एक हैं। एक है मतलब क्या, सबको पकड़ के दबा दिया एक मशीन में, एक मोटा फट्टा काटा आदमी, ऐसा नहीं। एक है मतलब हमारा इच्छा एक है, हमारा आवर इंटरेस्ट आर वन। तो इस तरह से हमारी इच्छा को भगवान की इच्छा के अनुसार उसमें लगाना, वो एकत्व, ये जो है वो परिपूर्णता है, वो इच्छा की परिपूर्णता है। तो इस तरह से भीष्म देव ने, इच्छा रहित थे वो क्योंकि आजीवन उनकी इच्छा कुछ भी नहीं थी, जो भगवान की इच्छा वही मेरी इच्छा, इस तरह से वो जीवन जिए थे। इसीलिए उन्होंने अपने भौतिक इच्छाओं से हटा लिए और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। यानी जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उससे रहित हो जाता है, तब वो पूर्ण रूप से पीड़ा से मुक्त हो सकता है। जैसे आप सोचेंगे कि ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा पजामा है, ये मेरा कुर्ता है, और वो कुर्ता अगर फट गया तो आपका हृदय भी फट गया लगता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत प्रिय है वो, पर आप कुर्ता नहीं हो, कुर्ता को कुछ हुआ तो आपको कुछ नहीं हो रहा है, पर जिस हद तक उससे आसक्त रहेंगे उसमें कुछ हुआ तो हमको भी तकलीफ होता है। तो भीष्म पितामह इन सारे शारीरिक भगवान के ध्यान करने से इन चीजों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप ठप्प हो गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य स्तुति की। अब वो दिव्य स्तुति कर रहे हैं, भगवान में लगा रहे हैं अपने मन को, और अब कह रहे हैं भीष्म पितामह, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती, इति मति मति का अनुवाद प्रभुपाद जी कहते हैं थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग का यानी सोचना, अनुभव करना और चाहना। मन का तीन काम होता है, सोचना, अनुभव करना और चाहना। जैसे मैं यहां बैठा हुआ और मेरे सोच में आया यहां से मेरे को रंकड़ा जाना चाहिए, अभी थोड़ा वहां का सरोवर थोड़ा देखना चाहिए। मैंने सोचा, फिर हृदय में अनुभव करता हूं, वाह ठंडा ठंडा पानी रहेगा, वहां बहुत अच्छा पेड़ रहेगा, बगल में शायद कोई आइसक्रीम वाला रहेगा, या ठंडी हो तो गरम गरम कुछ भेलपुरी पानीपुरी कुछ रहेगा डब्बा वहां, तो वो भी लूंगा, आराम से बैठूंगा, आनंद लूंगा। तो अनुभव करता है मन, सबसे पहले सोचता है। मन का कनेक्शन तीन जगह से है, मन का कनेक्शन दिमाग से है, मन का कनेक्शन हृदय से है, और मन का कनेक्शन इंद्रियों से है। तो दिमाग से जो कनेक्शन है, मन सोचता है, वो कुठे जायचा माला, आज इधर जाऊंगा, आज उधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, क्यों जाने का है, हृदय अनुभव करता है कितना कितना अच्छा जगह है, देखने में कितना सुंदर है, खाने में कितना स्वादिष्ट है। और फिर इंद्रियों में इच्छा करना, चलो उठो, मोटरसाइकिल चालू करो, बैठो, तो इस तरह से सोचना, अनुभव करना और फिर इच्छा करना, तीन स्तर पर, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, निश्चय करना, हां अभी मैं करूंगा अभी। तो ये मन का काम है। तो इति मति उपकल्पिता, उपकल्पिता मतलब सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, तीनों एक ही जगह पे लगाया उन्होंने। भगवान के बारे में सोचने लगे, भगवान का सुंदर स्वरूप का अनुभव करने लगे और भगवान का स्मरण करने का इच्छा करने लगे, इच्छा और स्मरण करने लगे। इति मति उपकल्पिता और वितृष्णा, वितृष्णा का मतलब है दूसरे सोच से, दूसरे अनुभवों से, दूसरी इच्छाओं से खींच लिया अपने आप को। हमारा मन, कभी कभी हम जप के लिए जब बैठते हैं, हम देखते, कभी कभी क्या हमेशा, जब हम जप के लिए बैठते देखते हैं बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें अनुभव कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें इच्छा कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, सुनिए कितने सुंदर से एक तात्पर्य में, एक ही श्लोक में, एक में वाक्य में कहते हैं, ये इतना आश्चर्यजनक क्यों है, भीष्म पितामह का, भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति अगर व्यासदेव हिमालय में बैठकर ये करते तो बड़ी बात नहीं है, पर भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति को जब चाहे मृत्यु के समय इस तरह से नियंत्रण करके भगवान के चरणों में लगाना बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव एक राजनीतिक, हमें मालूम है जो राजनीतिक होता है, और ये क्या छोटे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं, पूरे कौरव जो थे पूरे विश्व को संभालते थे, हस्तिनापुर के राजगद्दी पर जो बैठता था वो पूरे विश्व का सम्राट हुआ करता था। तो कितना सोचना पड़ेगा, और वो प्रमुख राजा को भी मार्गदर्शन देने वाले थे व्यक्ति, तो कितने विचार उनके मन में होंगे, इसके बारे में सोच रहे होंगे, उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, हजारों विषय के बारे में सोच रहे होंगे। कुरुवंश के मुखिया, मुख्य व्यक्ति, पांडव कौरव इतने सारे लोग, उनके कितने सारे संबंधी, 100 पुत्र पौत्र और उनके भी प्रपौत्र, किसी का बर्थडे आज हो रहा है, किसी का शादी हो रहा है इसलिए बुलाया है, आप प्रमुख हैं तो प्रभु सबको बुलाएंगे, आपको आना ही पड़ेगा, भीष्म पितामह जी आपके बिना तो कुछ नहीं चलेगा, तो इधर जाना उधर जाना इधर जाना इधर जाना। उसकी उसके बहुत सारे कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, उनकी अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी, है कि नहीं? इसी तरह से हम भी कई अलग अलग पात्र हैं, हमने स्वीकार किया है। इस तरह से यहां चार बताया गया भीष्म पितामह का, हमारा 10 होगा। मैं पुत्र हूं मेरे मां बाप का, मैं पिता हूं मेरे बच्चों का, मैं पति हूं मेरे पत्नी का, मैं ओनर हूं मेरे घर का, मैं मेंबर हूं मेरे सोसाइटी का, मैं मैनेजर हूं मेरे ऑफिस का, मैं शिक्षक हूं मेरे विद्यार्थियों का, मैं विद्यार्थी हूं मेरे शिक्षक का, कई इस तरह से मैं संबंधी हूं मेरे सारे समाज के संबंधियों का, मैं मित्र हूं मेरे मित्रों का, हजारों हमने हमारे उपाधियां हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं हमारे, और हर एक उपाधि में हमें बहुत सारे कार्य करने हैं। दिवाली आ गया, मित्र को बहुत सारे ग्रीटिंग भेजना पड़ेगा, पिताजी ने मांगा उसको जाके देना पड़ेगा, बच्चे का फीस भरना पड़ेगा, पत्नी ने मांगा लाके देना पड़ेगा, सोसाइटी में ये सब मांगा इतना पैसा देना पड़ेगा, सेक्रेटरी होने के कारण पानी आजकल नहीं आ रहा उसको जाके बोल के कमाना पड़ेगा, बहुत सारे हरेक पात्र जो है, उस उपाधि जो हमने स्वीकार किया है उसमें हरेक सारे, और हरेक उपाधियों से संबंधित कुछ लोग हैं, और कुछ लोगों का मतलब जैसे उस लोगों के बारे में सोचे तो हृदय में कुछ अनुभव होता है कि नहीं? पति जब अपनी पत्नी के बारे में सोचता है तो कुछ तो अनुभव होगा उसके संबंध के अनुसार, क्या पता नहीं कैसा अनुभव होगा, अच्छा अनुभव होगा या बुरा होगा। माता पिता के बारे में सोचता है तो अलग प्रकार का भावनाएं हृदय में आएंगी, बच्चों के बारे में सोचता है तो कैसे बच्चे हैं उसके अनुसार ऐसे अनुभव होगा, भावनाएं आएंगी। तो इस तरह से, और फिर इच्छाएं करते हैं, अगर गुस्सा आएगा बोला आज मैं उसको बोलता हूं, मैं बहुत दिन से सोच रहा था पर आज मैं बोल ही देता हूं उसको, इच्छा करना, अरे बहुत समय से वो पेंडिंग है उसको आज भर देता हूं बिल, इच्छा करते रहते हैं, बहुत सारे योजना बनाते रहते हैं हम लोग, सोचना अनुभव करना और इच्छा करना। हर एक पात्र में बहुत सारे कर्तव्य हैं हमारे, सोचते हैं अनुभव करते हैं लोगों से, चीजों के साथ हमारा संबंध है, जो अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारा हृदय उभर आता है प्रेम से, कुछ बुरे व्यक्तियों के बुरे चीजों के बारे में बुरे विषयों के बारे में सोचते हैं तो हृदय में द्वेष क्रोध काम वासना उत्पन्न हो जाती है, हृदय भर आता है। इच्छा करते हैं तो वह भी करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी योजना प्लानिंग शुरू हो जाता है दिमाग में। तो इस तरह से भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति, इतने सारे जिम्मेदारियां ये सब निभाते हुए भी जब चाहे अपने मन को सब चीजों से निकालकर पूर्ण रूप से पूर्णतया निकालकर जहां चाहे वहां लगा सकते थे, ये योग की परिपूर्णता है। जो ये कर सकता है वो जीवन में यश प्राप्त कर सकता है, जीवन के जो अंतिम गति है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च माम एव, मृत्यु के समय हमारे सारे विचारों को भौतिक संसार से चीजों से हटाकर माम एव स्मरण, पूर्ण रूप से भगवान के स्मरण में करते हुए, मुक्त्वा कलेवरम, जो शरीर छोड़ता है यह प्रयाति, और इस तरह से प्रयाण शुरू करता है, स मद भावम याति, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, न अत्र न अस्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए यत जहां भी, मतलब जैसे जैसे हमारा मन होता है वैसे वहां वहां जाता है, ऐसा नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल है। अभी भी हम देखते हैं एक क्षण के अंदर कई जगह मन जाते हैं। तो भीष्म पितामह कैसे कर पाए, और उसे भी महत्वपूर्ण, ये महाजन है, हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, एक क्षण के लिए सोचिए, जब आप जप के लिए बैठते हैं कितने सारे विचार आते हैं, और आप थोड़ा सोचिए, कोई भी विचार आया समझ लीजिए, तो उस विचार से आप सोचेंगे ये विचार किस चीज, कोई ना कोई एक पात्र से जुड़ा हुआ, उपाधि से जुड़ा हुआ विचार। आप सोचेंगे अरे मेरी पत्नी ऐसी, यानी पति के उपाधि में आप सोचने रहे हो, अभी उस उपाधि में चले गए, फिर आप सोच रहे जब्त करते करते, अरे आज मेरा बच्चा हो उसको छोड़ के आना है स्कूल में, इसका मतलब पुत्र का जो उपाधि, पिता का जो उपाधि है वो सामने आ गया है, और वो भी सोच रहा है, अनुभव कर रहा है, इच्छा कर रहा है। फिर आप सोच रहे अरे आज मेरा वो टीचर ने मांगा, इसको इसको प्रेजेंट करना है मेरे को, ये पूरा असाइनमेंट बनाने का है। तुरंत आप विद्यार्थी की उपाधि में आ गए, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना शुरू हो गया। कई सारी उपाधियां हैं, कई सारी इच्छाएं, कई सारी अनुभवें, कई सारी सोचने वाले की विषय होते हैं। तो इसीलिए जब जप करने हमें कहा जाता है, तो हमें कहा जाता है कि भैया एक काम करो, कम से कम ये 1.5 घंटा जो 16 वाला जप कर रहे हो, इस समय सारे उपाधियों को साइड में रख दो, कम से कम 1.5 घंटे के लिए अभ्यास करो। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। अरे आज 1 घंटे के लिए तुम मन को सब जगह से निकालकर नहीं कर सकते ध्यान, तो मृत्यु के समय कैसे होगा? अरे डेली टेस्ट या वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट में फेल हो रहे हो, तो फाइनल टेस्ट में कैसा पास होगे? हर एक मंथली टेस्ट में फेल होता है बच्चा, तो फाइनल टेस्ट में कैसा पास होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कम से कम दैनिक जीवन में जब दिन में एक बार बैठते हैं, कम से कम उस समय सर्वधर्मान परित्यज्य, कम से कम उस समय के लिए, और सब चीजों को साइड में रखो। पर आप बोलोगे बिना उपाधि के कैसे रह सकते हैं महाराज, कोई तो उपाधि होना चाहिए। हां, एक उपाधि होना चाहिए, और उस उपाधि के अंतर्गत हमारे सोच विचार, हमारे अनुभव और हमारी इच्छाएं होनी चाहिए। और वो उपाधि क्या है? कम से कम जब से पहले हमको सोचना चाहिए मेरा शाश्वत उपाधि क्या है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णर नित्य दास, ये उपाधि आपका कोई भी कभी छीन नहीं सकता। दूसरी उपाधि बदलेंगे, आज स्त्री है, अगले जन्म में पुरुष हो जाओगे, पुरुष है तो स्त्री हो जाओगे। अगले जन्म छोड़ो, इस जन्म में आज विद्यार्थी है, कल आप शिक्षक बन जाओगे, आज पुत्र हो कल पिता बन जाओगे। इस जन्म में भी उपाधियां बदलती रहती है, उपाधियां नश्वर है, पर एक उपाधि हमारा शाश्वत है। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। ये उपाधि हमारा शाश्वत उपाधि है, ये हमारा सनातन उपाधि है, सनातन धर्म। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कम से कम जब से पहले हमको ये सोचना चाहिए ये मेरा नित्य शाश्वत उपाधि है। अच्छा, इस उपाधि में, कोई भी उपाधि में जाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको अनुभव तो करना होगा, हृदय अनुभव करना चाहिए, और शरीर इंद्रियां इच्छा करनी चाहिए। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं इस उपाधि में हमको क्या सोचना चाहिए, इस उपाधि में एक ही लक्ष्य, हर एक उपाधि में एक एक लक्ष्य होता है हमको, है कि नहीं। अगर मैनेजर है तो हमको यशस्वी होना चाहिए, अगर पुत्र है तो पिता को प्रसन्न करना चाहिए, अगर पति है तो पत्नी को, इस तरह से जो भी कुछ लक्ष्य होता है। तो इस उपाधि में जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इस उपाधि में हमारा लक्ष्य क्या है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देह प्रेम धन, धर्म स्वनुष्ठित पुमसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेत यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम। धर्म सुअनुष्ठित, ठीक है, आप अपने अपने धर्म, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो भी हो, मुख्य कुरु के मुखिया जो भी हो, धर्म सुअनुष्ठित पुमसाम विश्वक्सेन कथासु यह, भगवान के कथा में नाम रूप गुण लीला में न उत्पादयेत यदि रतिम, अगर प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, श्रमये वही केवलम, आप उस तृण को पीट रहे हो जिसके अंदर से वो दाना निकल गया है, सिर्फ वो छिलके को मार रहे हो, भूसा, भूसा होता है ना धान्य निकालने के बाद जो भूसा रहता है, उस भूसे को जितना भी मारो कुछ नहीं निकलेगा अंदर से। इस तरह से धर्म का पालन कर रहे हो पर अगर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, प्रेमापुमार्थो महान, तो एक उपाधि बस हमारा शाश्वत उपाधि है, और वो शाश्वत उपाधि क्या है, हम जी भगवान के दासों के दास हैं, और इस उपाधि में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, सनातन लक्ष्य, वो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, केवल उतना है। प्रेम धन बिना व्यर्थ समय वही केवल, और दरिद्र जीवन, दरिद्र जीवन, दरिद्र जीवन का मतलब है दारिद्रता आ गई, गरीब भिखा भिकमंगा जैसा आदमी मर गया, भले करोड़पति तुमने करोड़ों कमाया पर जब मरे तो सब धन तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, एक ही धन तुम ले जा सकते थे, प्रेम धन, वो धन नहीं ले गए क्योंकि तुमने इकट्ठा ही नहीं किया उसको। तो हां पूरे दिन भर दूसरे धन एकत्रित करेंगे पर जब हम भक्ति के लिए साधना के लिए बैठते हैं तो हमारा एक ही धन है, प्रेम धन। तो एक बार उपाधि हमारा हो गया, इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जैसा मैंने कहा आप इच्छा रहित नहीं हो सकते, आपको इस उपाधि में सोचना ही पड़ेगा, अनुभव करना ही पड़ेगा, इच्छा करना ही पड़ेगा। तो किस बार किसके बारे में सोचे, कैसा अनुभव करे और किस प्रकार की इच्छा करे। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में एक श्लोक बोलते हैं, तीन एक चार चार पंक्ति का ये श्लोक है और ऊपर के तीन पंक्तियों में बोलते हैं किस चीज के बारे में सोचना है, किस चीज का अनुभव करना है, किस चीज की इच्छा करनी है। एक तो आपने सोच लिया कि मैं कृष्ण का दास हूं, दास है तो अभी क्या सोचना चाहिए, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि, सोचो मैं अभी कृष्ण का नाम ले रहा हूं, वो नाम कितना मधुर है, कितना शक्तिशाली है, कितना कृपा से भरा हुआ है, सोचो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, ब्रह्मांड भ्रमिते, मुझे गुरु की कृपा से भगवान की कृपा से ये नाम मिली है, ये नाम जो प्रायशः मनुष्याणाम सा किसी को नहीं मिलता, लाखों में किसी एक को मिलता है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इसके अंदर ये कृष्ण से अभिन्न है। सोचना है तो इसके बारे में, नाम के बारे में सोचो, नाम की महिमा के बारे में सोचो, जप करते वक्त नहीं, जप करने से पहले, फिर उसका आस्वादन करो। सोचने के लिए सोचो कि नाम की महिमा क्या है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनः हो, कि कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण मेरे जीवा के ऊपर अभी नाचने वाले हैं डेढ़ घंटे के ऊपर। हमको संग चाहिए ना, कभी कभी बोलते हैं हमको संग चाहिए, संग चाहिए, अरे संग देने के लिए आए हुए हैं, अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, भगवान आपके जीवा के ऊपर नाचने वाले और आपका मन कहीं और नाच रहा है, किसी और के साथ रासलीला कर रहा है, बेचारे भगवान इधर ही नाच रहा अकेले। तो सोचना है तो ये सोचो, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि, कितना मीठा है। और अनुभव करना है, क्या अनुभव करना है, पित्त उपतप्त रसनस्य नरोचिकान, कितना दुर्दैव है मेरा, क्या परिस्थिति है मेरी, कितना पतित हूं मैं, कितना कठोर हृदय वाला हूं कि इतना कृपा। स्यात् नाम नामकारि बहुधा निजय शक्ति तत्रार्पिता निमित स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदशम इहा जनी नानुरागा, मेरे हृदय में प्रेम नहीं है उसके प्रति, छह कितना पतित हूं मैं, कोई योग्यता नहीं है मेरे, कुछ भी रस नहीं है इस नाम पे, मुझे नाम की महिमा मालूम है, शास्त्र से सुना हूं, भक्तों से सुना हूं, पर बोझा लग रहा है जप करना मेरे लिए, क्या दुर्दैव स्थिति है मेरी। सोचना है तो ये सोचो, जप के पहले, जप के दौरान नहीं, क्योंकि ये ऐसे सोचेंगे तब भगवान के आश्रय लेने को प्रेरणा मिलेगी। और फिर चाहना क्या, इच्छा क्या करना चाहिए, स्यात् कृष्ण नाम चरिता आदि सीतापि, सोचो नाम की महिमा के बारे में सोचो, पित्त उपतप्त रसनस्य न रोचिकान, अनुभव करो क्या दुर्दनीय स्थिति है हमारी। और अब करना क्या है फिर, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्ट्वा, पर फिर भी भले रस नहीं हो, भले मुझे प्रेम नहीं हो, कम से कम साधना के स्तर पर, किंतु आदरात, बड़े आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जितना श्रद्धा हम इकट्ठा कर सके अपने हृदय में उतना श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से महिमा को जानते हुए, नाम की महिमा श्रद्धा पूर्वक, किंतु आदरात अनुदिनम, हर रोज खलु सही वजुष्टवा, मैं लेके रहूंगा, कम से कम जो मेरा एक नियम बनाया मैंने उतना तो कम से कम अच्छी तरह से प्रयास लेने का प्रयास करूंगा, वो दृढ़ विश्वास करना, वो इच्छा करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करूंगा, ढीलापन नहीं आना चाहिए, मन इधर उधर भटके बिना मैं प्रयास करूंगा, ये इच्छा करना। किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्ट्वा, फिर क्या होगा, स्वाद्वी क्रमात् भवति, ऐसा अगर दृढ़ता पूर्वक जब करेंगे, जहां भी मन जाएगा वहां से खींचकर, जहां लगाना है वहां लगाने का प्रयास करेंगे, हरे कृष्ण वापस वापस वापस, तो शायद स्वाद्वी क्रमात् भवति, क्रमशः धीरे धीरे, क्यों, स्वाद्वी, स्वाद आ जाएगा उसमें, रुचि आएगी। अभी रुचि क्यों नहीं है, रुचि अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अभी भजन क्रिया कर रहे हैं पर अगर तीव्रता से करेंगे, निष्ठा भाव से करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति स्या तथा निष्ठा रुचि, तब थोड़ी बहुत रुचि आएगी, क्यों, तद्गद मूल हंत्री, मूल से निकलेगा सारा जो अनर्थ है, धीरे धीरे मूल से निकलेगा। हमारे एक भक्त हैं बंबई में, डेंटिस्ट हैं, दांत के डॉक्टर हैं, उनके एक मित्र हैं वो फाइटर पायलट है, फाइटर पायलट, और ये प्लेन जो होते हैं 500 या 5000 करोड़ के होते हैं, बहुत कॉस्टली होता है ये, सुपरसोनिक जेट, मतलब साउंड से भी अधिक स्पीड में जाता है वो, और उनको बोला जाता है जब वो प्लेन में बैठते हैं उसमें 350 कंट्रोल है, मतलब जैसे आप कार में बैठते हैं तो एक ये होता है, ब्रेक होता है, एक्सेलेटर होता है, ऐसा चार पांच चीज आपको ध्यान देना पड़ता है कि नहीं, एक तो स्टीयरिंग व्हील, दूसरा एक्सेलेटर, दूसरा ब्रेक, दूसरा और कुछ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गेयर और हॉर्न, कितना, मतलब 6-7 कंट्रोल होते हैं कि नहीं, 6-7 या मैक्सिमम 8 होता है, पर ये फाइटर प्लेन में 350 कंट्रोल्स हैं और आपको सब पे ध्यान देना पड़ेगा, और सब बगल बगल में, इसके बदले ये दबा दिया, ऊपर जाने के बदले नीचे चला जाएगा प्लेन, और सुपर स्पीड, इतना स्पीड में जाता है कि थोड़ा अगर ऐसा हो गया तो चले जाएगा अंदर गड्ढे में। तो वहां अगर आप सोचो चलाते वक्त अगर थोड़ा समय के लिए झपकी हो गया, जैसा जापान में होता है हमारा, हरे कृष्ण खत्म हो गया, 5,000 करोड़ गया गवर्नमेंट का, और वो पायलट भी गया, उसका ट्रेनिंग का खर्चा सब गया। इसीलिए वो फाइटर पायलट लोगों को बोला जाता है, जब भी तुम्हें बोला गया है कि तुम्हारा ड्राइविंग टाइम है, मतलब प्लेन चलाने का है, अगर 1 घंटे के लिए समझ लो सुबह 8 बजे का फ्लाइट है तुम्हारा, उसके 16 घंटे पहले 1 बूंद दारू नहीं पी सकते तुम, क्योंकि पायलट लोग ऐसा थोड़ा पीते हैं, बोले 16 घंटे पहले से तुम्हारा पीना बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय वो असर लगना नहीं चाहिए इस समय जब प्लेन में बैठता है, नहीं तो पी के बैठ जाएगा तो फिर कहीं चला जाएगा, और प्लेन भी ऐसे ही जाएगा उसके जैसा उसके दिमाग जैसे और मिनिमम ऐसा पता नहीं कितना 7 घंटा 8 घंटा आराम किया रहना चाहिए, नींद हुआ रहना चाहिए उस व्यक्ति का। ऐसा नहीं कि पूरे रात पार्टी किया, पिया नहीं, पर ऐसे आके ऐसे बैठ गया। नियम है उनका, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो 1 घंटे का जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए तैयारी 16 घंटा पहले होती है उनकी। इसी तरह से जब हम जप के लिए बैठते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे दिन का, क्योंकि उस समय हम अपनी चेतना को अच्छा बनाते हैं, ताकि पूरे दिन भर जो कार्य करें वो कृष्ण भावना भावित होकर करें। और जो व्यक्ति हर दिन का जो ये हमारा परीक्षा है, कम से कम 1.5 घंटे के लिए हर रोज हमें आदत मिला है कि जहां भी मन जाए वहां से खींच के भगवान को लगाने में आदत हुआ है, आदत हुआ है, आदत हुआ है, आदत हुआ है, और एक दिन मृत्यु भी आ गई तो पुराना आदत है हमको, फटाक से मन को लेके हरे कृष्णा बोलेंगे तो तुरंत मन आ जाएगा, जहां लगना लग जाएगा, क्योंकि आदत है। अगर आदत नहीं है नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि भीष्म पितामह जो कुछ भी कर रहे थे कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण के निर्देशन के अनुसार, कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने हेतु, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि धर्म को जानते थे उसके अनुसार कर रहे थे। इसीलिए हम देखते हैं जब मौत मतलब मृत्यु का समय आया, मरणासन्न अवस्था में, क्योंकि अभ्यास था उनको, अपने मन को सब जगह से हटाया और जहां लगाना है वहां लगाया। तो मृत्यु के समय होगा या नहीं दूर की बात है, कम से कम अभी हमको प्रयास करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे उपाधियां हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर अगर 1.5 घंटे के लिए हर रोज हम अपने आप को इन आसक्तियों से, इन जिम्मेदारियों से हटकर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसमें अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर मृत्यु के समय कैसे देंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, मृत्यु के समय जो आप सोचोगे अगले जन्म का शुरुआत वहीं से होगा। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है जहां हम देखते हैं, और फिर भीष्म पितामह बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं 20-25 श्लोकों में, जहां भगवान के साथ उनका जो आदान प्रदान हुआ था, ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य उसका स्मरण करते हैं। जैसा हमारा एल्बम होता है ना, फोटो एल्बम होता है, शादी का एल्बम, हम देखते हैं, देखो हम लोग मिले थे, इसके बाद ये हुआ था, उसके बाद उधर हुआ था। तो कुछ महत्वपूर्ण घड़ियों को हमने कैमरा में क्लिक करके उसको हमेशा के लिए फ्रेम लगाकर हमारे एल्बम में चिपका के रखा है, ताकि जब चाहे हमारे मन को, हमारे जो विचार हैं उनको उस समय में ले जाएं। वाह, कितना सुंदर समय था वो। इसी तरह से हर रोज जब हम भगवान के सामने आते हैं तो हमारे आंखों के कैमरा को लेके आना चाहिए, और हृदय के रील को साफ करके रखना चाहिए, और आंखों के सामने जैसा दर्शन खुलता है, क्लिक, क्या दर्शन है आज। फिर यात्रा में गए, कोई अच्छा दर्शन हुआ, क्लिक, फोटो ले लिया। और यह एल्बम आपके कपाट में नहीं, हृदय में रखना चाहिए, और बीच बीच में उसको थोड़ा देखते रहना चाहिए। और फिर मृत्यु के समय तुरंत एल्बम खोलना चाहिए, वो दर्शन, हरि बोल कृष्ण गोविंद गोकुलानंद राधा रमण राधा गोविंद। कैमरा खोल रहा है फटाफट फटाफट, एक एक फाइल खोलता रहता है, एक पासवर्ड जैसा, एक दबाया तो पूरा फाइल खोलता है। तब स्मरण करना बड़ा आसान हो जाता है। यानी जो कुछ भी हम करते हैं ध्यान पूर्वक करना चाहिए, चेतना पूर्ण होनी चाहिए वहां, इट इज नॉट मैकेनिकल। और तब शायद एक दिन भीष्म पितामह महाजनो ये नगतस्पन था, महाजन के समान हम भी स्मरण कर सकते हैं और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। यानी बी कॉन्शियस ऑफ द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दैट वी डू। कृष्णा कॉन्शियस मीन्स टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, हाउ इट इज कनेक्टेड विद कृष्णा, किस तरह से कृष्ण से संबंधित है, ये सोचता हमेशा ध्यानपूर्वक। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Mm-hmm.